Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudhulilhu falahadiyya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون صدق الله العظيم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، دین کی بات کا مذاکرہ کرنے اور دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونا اسلام میں ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے کہ جس چیز کو آدمی بولتا ہے، سنتا ہے، اس چیز کو یاد رکھتا ہے، اور جو کام کرنے کا ہے جب وہ یاد رہتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مختلف میٹنگز ہیں اور دوسری اور چیزیں ہیں، اس کے لیے ریمائنڈر رکھتے ہیں. مختلف پروگراموں کے ریمائنڈر ہوتے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ یاد ہوگا تو کام ہوگا، یاد نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا. تو مذاکرہ یاد ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاؤ، یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہمارا جمع ہونا دین سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے، ایمان والے ہونے کے، اسلام والے ہونے کے جو ذمہ داریاں ہمارے ذمے ہیں، جو فرائض ہمارے ہیں مذہبی، ان کو ہم آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، ورنہ یہ دنیا غفلت کی ہے. معصیت کی اور غفلت کے ماحول میں طاعت کی اور فرمانبرداری کی باتیں کہاں یاد رہ پائیں گی؟ اسے ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے میں اس بات کی صفائی کر دوں کہ ہمارے بعض ساتھیوں کو یہ اشکال ہو گیا کہ بھائی ایسے سینٹر میں پروگرام کیوں رکھ لیا آپ نے. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ بہتر ہوتا کہ نہ رکھتے، مگر مجبوریاں ہوتی ہیں بعض مرتبہ، جگہ چھوٹی تھی تو مناسب سمجھا ان لوگوں نے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جمعہ کے دن ہم لوگ ہال رینٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی تو کسی غیر مسلم کا ہی ہوتا ہے. کتنی مرتبہ چرچوں میں آدمی کو رینٹ کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی. انہوں نے پوچھا تھا کہ مسجد کا بھی انتظام نہیں ہے، ہم لوگ کہاں نماز پڑھ لیا کریں؟ چرچ والے اجازت دے رکھے لیں گے، ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیا کریں. تو خلفائے راشدین کی سنت میں بھی اجازت ملتی ہے، لیکن بعضی چیزیں انتظاماً تھوڑا وہ نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے اگر نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اگر ہو گیا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، شرعاً جو ہے اس کی گنجائش ہے. ایک इस दुनिया में इंसान मर्द हो या औरत वो अपनी इंसानियत की तकमील के लिए मुकर्रर है, पाबंद है कि हर इंसान को मुकम्मल होके अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह पाक ने इंसान की जात को, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को मां के पेट में बनाया और इंसानियत को बनने के लिए दुनिया का पेट मुकर्रर फरमाया। तो वहां इंसान की जात बनी, यहां इंसान की सिफात बनेगी और जात और सिफात के बनने के बाद इंसानियत मुकम्मल होगी। और बनी हुई ये चीज जन्नत में रखी जाएगी और बिगड़ी हुई ये चीज जहन्नम में फेंकी जाएगी। जैसे फैक्ट्रीज में जो माल तैयार होता है, अगर वो बन जाता है तो फिर मार्केट में आता है, अच्छी जगह जाता है जिसके लिए वो बना है, और अगर उसमें फॉल्ट होता है तो फिर उसको गार्बेज कर दिया जाता है। अब ये फॉल्ट भी कई किस्म का होता है, बाद ऐसा मटेरियल होता है कि जिसमें सलाहियत ही नहीं होती कि वो सही हो सके, उसका डेंट दूर हो सके, उसका प्रॉब्लम सही हो सके, तो फिर उसको तो फिर हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा कचरेदान में। और बाद ऐसा होगा कि जिसको जैसे अपने यहां अठारना कहते हैं हमारे हैदराबादी जुबान में, जब गाड़ियां उड़ियों को मार लग जाता है तो यहां की थोड़ा थोड़ी होता है कि भाई जाओ गाड़ी को तो करो जंक में और उसके बाद में नया माल उठा लो। वहां पे तो मठारना होता है, डेंटल वगैरह सब मार मार के ठीक कर लेते हैं और फिर माल मार्केट में नया का नया लगता है कलर उलर करके। तो अगर काबिल इसलाह है तो उसकी इसलाह हो जाएगी, मगर उस सीरत की इसलाह, रूह की इसलाह, बातिन की जो इसलाह होगी वो मामूली नहीं होती। असल में उसके लिए बहुत लंबे टाइम के लिए आदमी को भट्टी में रखा जाएगा, आग की भट्टी होगी, किसी को 1,00,000 साल, किसी को 1,00,000,000 साल, किसी को मिलियन, किसी को बिलियन साल उसमें रखा जाएगा, तब वो सही होगा वो माल और जन्नत में दे पहुंचाए जाने के काबिल होगा वो। बाद ऐसा होगा कि जो काबिल ही नहीं होगा, लिहाजा उसको हमेशा के लिए उसमें ही रख दिया जाएगा। तो इस दुनिया में जो करने का काम है, चाहे अमेरिका में रहे कोई, चाहे इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, बांग्लादेश में रहे, हिंद में रहे, सिंध में रहे, चीन में रहे, कहीं रहे, असल इंसान के करने का काम ये है, ये इसकी जिम्मेदारी है। और मजहब इस बात को सिखाने के लिए होता है। जब आप दुनिया में रहते हैं तो आप अपने खाने का इंतजाम कैसे करेंगे, किन किन रास्तों से करेंगे, मजहब इसमें सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बताता है। आप तामीरात की लाइन पकड़ लो, आप इलाज मुआलजे की लाइन पकड़ लो, आप सॉफ्टवेयर की लाइन पकड़ लो, आप हार्डवेयर की लाइन पकड़ लो, आप कोई और टेक्निकल लाइन पकड़ लो, आप टीचिंग की लाइन पकड़ लो, आप तामीरात की लाइन पर कोई और लाइन पकड़ लो, अपना रोजी हासिल करो। मगर इंसान जब तक दुनिया में है अपनी जरूरत पूरा करने के लिए इस इंतजाम की सहूलत इस्लाम देता है, बगैर इस्लाम आता इसलिए नहीं है, इस्लाम के आने की गरज यह नहीं होती, मजहब इसलिए नहीं हुआ करता। और अगर मजहब के बगैर आदमी ने अपनी जिंदगी गुजार दी, चाहे कितनी ही उसने आरामदेह जिंदगी गुजारी, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए कि आराम ही टेम्पररी होता है, थोड़े दिनों के लिए होता है। कितनी भी लंबी जिंदगी दुनिया में आदमी गुजार ले, उसका आराम बहुत मुख्तसर होता है। अब वो आराम उसने अगर हासिल कर लिया और उसी के पीछे अपनी सारी जिंदगी लगा ली, तो मुख्तसर टाइम के लिए उसने हासिल किया आराम, हमेशा के लिए वो महरूम रह जाता है। इस हकीकत को कुरान पाक में बहुत समझाया अल्लाह ने, बहुत समझाया, क्योंकि ये बात जल्दी आदमी पिक करता नहीं, इंसान का जहन इस बात को जल्दी लेता नहीं, और लेता है तो उसमें लज्जत नहीं है, उसमें लुत्फ नहीं है, उसमें स्ट्रगल है, उसमें मुजाहिदा सामने है, अंधेरिया है उसमें, तो फिर उसको अवॉइड करना चाहता है कि भाई इससे थोड़ा सा दूर ही रहो। फिरौन को अल्लाह ने, फिरौन की जिंदगी को मुसलमानों के सामने इसीलिए रखा कि देखो लग्जरी लाइफ असल नहीं होती, जिंदगी तो उसने गुजारी, बादशाह था, खजाने थे, एग्रीकल्चर का पूरा निजाम था, वहादील अनहार तजरीम इन तहती का मतलब यही है कि जब नहरों का पूरा सिस्टम मेरे पास कामयाबी के साथ चल रहा है तो मुझे एग्रीकल्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खजाने उसके पास थे, फौज उसके पास थी, ताकत उसके पास थी, सेहत उसके पास थी, हुकुम उसका चलता था, बात उसकी चलती थी। अब क्या आदमी को कमी रहेगी ऐसे आदमी को? मगर समझाया गया कि जिसके लिए हमने दुनिया में भेजा था उसे, वो काम उसने किया नहीं, इसलिए वो नाकाम हो गया। हारून की मिसाल को इसीलिए समझाया, बहुत दौलत उसने हासिल कर ली थी। मशहूर यह है कि वो पीतल को सोना बनाने का फन जान गया था, तांबे और पीतल को सोना बना देता था, उसको कीमिया कहते हैं ये लोग। और उसकी वजह से उसके पास मेहनत करके सैलरी बनाने वाली बात नहीं थी, पैसे ही बनाने की मशीन थी, नोट छापते रहो बस यही था। तो क्या कमी थी उसके पास? और ये दुनिया ऐसा है कि पैसा फेंक तमाशा देख, जब इतनी दौलत उसके पास आई तो फिर किसी चीज की कमी भी नहीं रही उसको। वो यही समझा कि बस जिंदगी राहत वाली हो गई है, किसी किस्म की कमी नहीं है, मैं कामयाब हो गया शायद। फरमाया गया नहीं, तुम एक दूसरे मकसद के लिए भेजे गए हो, वो किया ही नहीं तुमने, लिहाजा तुम नाकाम हो गए। कौम शुआब को धोखा हो गया था कि अगर बिजनेस है सही और फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अपना काबू में है, बस काफी है। इतना बेहतरीन बिजनेस था उनके पास कि पूरे वर्ल्ड में उनके बिजनेस के असरात थे। अल्लाह ने बताया कि जिस काम के लिए भेजा था वो तो किया ही नहीं। कौम आद का, कौम समूद का, कौम लूत का, साबेका का, कौम नूह का, कौम फिरौन का, कुरान पाक में जगह जगह जो जिक्र है तो सिर्फ स्टोरी ऐसे नहीं है ये कि भाई ये स्टोरीज हैं जिल जी बहलाने के लिए होना चाहिए एक आदमी को, नहीं, इसके पीछे बड़ा रीजन है कि पिछले लोगों ने धोखा खाया है, मेरे हबीब की उम्मत धोखा न खाए, इसलिए हमें दूसरों का नमूना नहीं बनाया, दूसरों को हमारे लिए नमूना बनाया। वरना ऐसा भी हो सकता था कि हम पहले आ जाते, फिर हमारी तबाही का मंजर दूसरी कौमें देखती, फिर उनको नमूना बताया था कि देखो इन्होंने ऐसी बर्बादी कर ली अपनी, लिहाजा तुम संभलो, अगला गिरा पिछला होशियार। हमें जो है ना पिछला बनाया गया, अगला नहीं बनाया गया। उसमें जहां और मसलियात है, एक मसलियात यह भी उलमा ने लिखी है। तो सिफत जो बनती है मेरे दोस्तों वो अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने से बनती है, ईमान बने आदमी का, और ईमान के तकाजे बने जिनको आमाल कहते हैं, तो उन दोनों के बनने से इंसानियत बनेगी। ईमान बने और इन ईमान के जो तकाजे, ईमान हमारे पास जो नजरिया है, अकीदा जो होता है इस्लाम में, उसकी खास बात यह है कि वो अमल से, अमली जिंदगी से, प्रैक्टिकल लाइफ से बराह रास्त जुड़ा हुआ होता है, लाजिम है वो उसका। अगर लाजिम नहीं पाया जा रहा तो इसका मतलब चीज ही नहीं पाई जा रही। आग तो पाई जा रही है लेकिन उसमें कोई सोजिश नहीं है, उसमें कोई तपिश नहीं है, उसमें कोई रोशनी नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आग फिर भी पाई जा रही है, असरात लाजमी है उसकी। तो ईमान के अंदर ये बात बताई जाती है कि तुम और बशमूल तुम्हारे पूरी कायनात, इसके खालिक को पहचानना, इसके मालिक को पहचानना, इसके ओनर को पहचानना, इसके रब को पहचानना, इसके हाकिम को पहचानना, इसके मुहाफिज को पहचानना, इसके मुदब्बिर को, मुदब्बिर मैनेजर को कहते हैं, युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयात, अल्लाह ही मैनेज करता है, ये मतलब है कुरान पाक की आयत का, ये कायनात के मैनेजिंग सिस्टम पूरा अल्लाह पाक करते हैं। इसको पहचानना कि वो खालिक है हमारा भाई, और हमारा नहीं, अल्लाह का मासिवा जो भी है वो अल्लाह की मखलूक है, हम भी मखलूक और जो अल्लाह का मासिवा है वो मखलूक। और खल्क एक ऐसा अमल है, ऐसी चीज है कि आप किसी जगह से उसको देखने, किसी दूसरी जगह पर सिंपल के तौर पर जान नहीं सकते कि खल्क इसको बोलते हैं। फैक्ट्री में बनने वाले माल को खल्क नहीं बोलते, क्योंकि मटेरियल से उसको गला पिघला के डाई में डाल के एक सांचे में ढाल लिया जाता है, खल्क में मटेरियल नहीं होता। बगैर मटेरियल के खल्क हुआ करता है। मैं और सारी कायनात नहीं थे, हम लोग सब मादूम हैं। वलम यकु शैअन मज़कूरा, अल्लाह ताला इंसान हीन मिन अद-दहर वलम यकु शैअन मज़कूरा, शैअ मज़कूर नहीं था, नहीं था वो, मादूम था। हम सब अदम में, صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ثابت تھے ہم اور آپ، یعنی ہمارے نہیں ہونے کے باوجود اللہ ہمیں جانتے تھے، کیونکہ جاننا اللہ کی صفت ہے، اور جس چیز کو جانا جائے اس کے بغیر جاننے کی صفت نہیں پائی جا سکتی تھی، اس لیے معلومات کے بغیر علیم نہیں ہو سکتے تھے وہ. تو اس لیے ہم سارے کے سارے، پوری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، بادل، ہوائیں، دریا، پہاڑ، پانی، زمین، زمین کے اندر کی ساری چیزیں، اور انسان، نباتات، جنات، فرشتے، حیوانات، درختوں کا پورا نظام، اللہ کے علم میں تھی یہ سب چیزیں، ان کی معلومات ہیں، یہ سب تھی نہیں کچھ بھی. اب جو چیز نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس کا کوئی میٹیریل بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مادہ بھی نہیں ہے. اسلام میں اور سائنس میں جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہی ہے، ذہن میں رکھو، وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ مادہ بھی نہیں تھا، میٹیریل بھی نہیں تھا. سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹیریل تھا لیکن را تھا، اس سے کچھ بنا ہوا نہیں تھا. ہم لوگ حدوث مادہ کے قائل ہیں، مادہ پیدا ہوا اس کے قائل ہیں. سائنس قدم مادہ کی قائل ہے، چاہے پرانی سائنس ہو چاہے نئی سائنس ہو، دونوں ایک ہی تھیوری رکھتے ہیں. قدم مادہ کا مطلب مادہ قدیم ہے، اس میں دھماکہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اس سے چیز بنی، ان کی اپنی تھیوری ہے. یہ ایک چیز ہے تو اس میں دھماکہ ہوا نا، ہمارے پاس چیز تھی ہی نہیں. اسلام کہتا چیز تھی ہی نہیں. اللہ تھے، ان کے ساتھ اور کچھ بھی تھا، چاہے کچا میٹیریل ہی کیوں نہ رہو ہو، تو دونوں پرانے ہونے میں برابر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا شریک لازم آ جائے گا. قدیم ہونا اللہ پاک کی ایسی اللہ کی صفات خاصہ میں سے ہے کہ اس میں کوئی شرکت نہیں ہے کسی کی، نہ کسی پیر پیغمبر کی شرکت ہے، نہ نور محمدی کی شرکت ہے اس میں. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں مقام ہاہوت اور لاہوت کہتے ہیں. کبھی آپ نے صوفیہ کا بیان سنا ہو تو وہ لوگ ان چیزوں کو بہت گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل موضوع جو ہے وہ مخلوق اور خالق کے درمیان میں تعلق کی نوعیت کو پہچاننا ہے کہ ربط کیسا ہے ان میں، اس لیے وہ وہاں تک جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں تھا، جب ایک چیز نہیں تھی ان کے علم میں تھی تو انہوں نے جس چیز سے بھی ظاہر کیا وہ خلق ہے، اور بڑا سیکرٹ ہے وہ. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو اللہ کے وجود کے نور میں نمایاں کیا گیا ہے، خلق اس کا نام ہے. اگر اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے کسی چیز سے تو وہ انسانی خیال ہے، اور وہ صرف مشابہت کے لیے، سمجھنے کی سہولت کے لیے. خیال اپنے سے ایک چیز کو سوچتا ہے تو وہ چیز خیال میں آ جاتی ہے. جیسے بیٹھے بیٹھے آپ نے یہاں کسی اچھی گاڑی کو سوچا، آ رہے تھے تو دیکھا آپ نے کہ سامنے نیا ماڈل آ رہا ہے، تو آپ کے دماغ میں آ جائے گا بھائی یہ گاڑی بڑی اچھی ہے یار، آپ کی مرتبہ اٹھائیں گے تو یہ اٹھائیں گے. آپ نے گاڑی کو سوچا اور دماغ میں آ گئی. اب وہ جو چیز دماغ میں گاڑی کی شکل میں قائم ہے وہ گاڑی نہیں ہے، آپ کا ایک معلوم ہے، آپ ایک چیز جس کو جانتے ہیں وہ ہے جو آپ سے قائم ہے، آپ ہی ہیں وہاں پہ، کچھ اور نہیں ہوتا. وہ معلومات جو ہیں نفس کے ضمن میں متعین ہوتے ہیں، وہی چیز متعین ہوتی. اچھا آپ اس گاڑی کے آپ ہی اول ہیں، آپ ہی اس کے آخر ہیں، آپ ہی اس کے ظاہر ہیں، آپ ہی اس کے باطن ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کیوں؟ وہ بکل شعین علیم. چونکہ وہ ہر چیز کا علیم ہے، تو علیم تو اپنے معلوم کا اول بھی ہوگا، آخر بھی ہوگا، ظاہر بھی ہوگا، باطن بھی ہوگا. اور اسی لیے ہر شے کے قیوم وہی ہوں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قائم رکھنا ہر چیز کا انہی کا کام ہے، وہ ہر شے کے قیوم ہے. اچھی برے کی تقسیم نہیں ہے اس میں. برا اچھا ہماری شریعت کے انتظام کے تحت میں مقرر ہوتا ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے اچھا برا کا کوئی ایرو نہیں جاتا ادھر، سب اچھا ہی اچھا ہوتا ہے. اس لیے بیدک الخیر ہے، وشر بلکہ نہیں ہے. خیر ہی خیر ہوتا ہے وہاں پہ، ہر چیز کا قیام ان سے ہی ہوتا ہے. تو خالق اس کو کہتے ہیں. اس لیے مخلوق جو ہے نا وہ محتاج ہوتی ہے 100%, ہزاروں لاکھوں اینگل سے, ہر آن ہر سیکنڈ, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بچی ہو, انسان ہو, غیر انسان ہو, فرشتے ہوں, جنات ہو, عرشی چیزیں ہوں کہ فرشی چیزیں ہوں, کچھ بھی ہو, جتنا اس سے اندازہ کرے کہ کتنا بڑا یہ حیولہ ہے. انسان کے خیال میں اور اس حقیقت میں, خلق میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیال کا لفظ نہیں بولتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں, جس چیز کو جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں کچھ ارادہ کرتے ہیں, ہم اس کو خیال بول رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس خیال الگ شکل میں پایا جاتا ہے, فرضی چیز ہوتی ہے وہ جس کو ہمارا خیال قائم کرتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی, حس سے اس کا تعلق نہیں. وہ جب ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں جیسے ایک فرضی چیز قائم ہو جاتی ہے, ویسے وہاں نہیں ہے, وہاں ریالٹی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ایک حقیقت حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے ٹچبل ہے, اس لیے حسیبل ہے, اس لیے دیدیبل ہے, اس لیے شنیدیبل ہے, سننے کے قابل ہے, دیکھنے کے قابل ہے, چھونے کے قابل ہے, پکڑنے کے قابل ہے, موٹی ہے, پتلی ہے, نرم ہے, گرم ہے, سخت ہے, وغیرہ 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 وغیرہ, بڑی ہے, چھوٹی ہے, اس کو وہ ریالٹی دے دیتے ہیں. مگر ہے پوری کی پوری مخلوق, میں اور آپ اور پوری کائنات, یہ سب محتاج ہیں. اور کب تک ہیں؟ ہمیشہ ہیں. مخلوق اپنے خالق سے احتیاج کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ختم کر سکتی. جیسے آپ کی گاڑی کے, آپ کے دماغ میں پائی جانے والی گاڑی کا قیام ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ سے دور نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ نے گاڑی کو چھوڑ کر گھوڑے کو سوچا ایک سیکنڈ کے لیے, وہ گاڑی گئی, بجائے گاڑی کے آپ نے کوئی اور چیز خیال میں لے آئی, وہ گئی, کیونکہ آپ ہی اس کے قیوم تھے, قائم رکھنے والے اس کے آپ ہی تھے, آپ نے توجہ ہٹا دی, ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محتاج ہیں ہم سب. اور یہ سب قرآن پاک کی آیتوں کا ہی ترجمہ کر رہا ہوں میں, صرف تعبیر تھوڑی بدلی ہوئی ہے سمجھ میں آنے کے واسطے. حقیقتیں ہیں, فرضی چیزیں نہیں ہوتی. ہر آن محتاج, ہر وقت محتاج, ہر سیکنڈ محتاج, ہر اینگل سے محتاج, دیکھنے میں, بولنے میں, سننے میں, سوچنے میں, ارادہ کرنے میں, چاہنے میں, دل کی دھڑکن میں, کڈنی کے فنکشن میں, لیور کے فنکشن میں, اندر باہر پورے آرگنس میں, خون میں, سیل میں, رگوں میں, گوشت میں, پوست میں, ہڈیوں میں, باہر آنے جانے میں, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, رہنے سہنے میں, گاڑی میں, گاڑی چلانے میں, شادی میں, بیاہ میں, بیوی بی بچوں میں, سب میں یعنی ایک آدمی تو محتاج ہی محتاج ہے یار. کوئی ایک احتیاج ہے ہمارے ساتھ, آکسیجن میں سورج کی احتیاج, زمین کی احتیاج, چاند کی احتیاج, اور جانے والا پانی کی احتیاج, ہواؤں کی احتیاج, احتیاج ہی احتیاج. ہم محتاج محض ہیں. ایمان جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو پہچاننا, کہ اللہ پاک اپنی صفتوں کے ساتھ کیسے ہیں. تو اللہ کی تو اتنی صفات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں, اس میں سے 99 کا تعارف کرایا گیا ہے ایک جگہ پر. اور علماء ویسے پہنچتے پہنچتے, کوشش کرتے کرتے 1000 تک پہنچے, 1000 صفات اللہ کی گنانے کے قابل ہوئے یہ لوگ, بقیہ وہ محدود نہیں ہیں. جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے تو ان کی صفات بھی لامحدود ہیں, جب اس کی صفات لامحدود ہیں تو نام بھی لامحدود ہے. اس میں سے خالق ہونا صرف ایسی بڑی چیز ہے, پہچان ہونا اس کی. اور جو خالق ہوگا وہی مالک ہوگا. آپ کے دماغ کی گاڑی کا کوئی دوسرا کہاں سے مالک ہو جائے گا؟ وہی مالک ہوگا. اور جو مالک ہوگا وہی رب ہوگا, پالنے والا وہی ہے. یہ ساری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنا انہی کا کام ہوتا ہے. چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانا, ناکام سے کامیاب بنانا, علم سے خالی کو علم سے بھرنا, فن سے خالی کو فن سے واقف کرانا, پوری ربوبیت کا انتظام, پہنانا, گرمی سے بچانا, سردی سے بچانا, گرمی سے بچنے کا سامان فراہم کرنا, سردی سے بچنے کا سامان فراہم کرنا, بھوک سے بچانا, بھوک سے بچنے کا سامان فراہم کرنا, پیاس سے بچانا, پیاس سے بچنے کا سامان, ربوبیت ہے یہ سب. اسی لیے ہے کہ اصل تعریف اللہ کی ہوتی ہے اس واسطے کہ وہ رب العالمین ہے. रुबूबियत क्यों करते हैं, पैदा क्यों किया, और जब आप ओन करते हैं तो पैदा किया तो जाहिर है कि ओन तो करेंगे, मगर यह कि फिर आप रुबूबियत क्यों करते हैं। कहने के इसलिए करते हैं कि रहमान है, रहम की बुनियाद पर खल्क है और रहम की बुनियाद पर रुबूबियत है। अल्हम्दुलिल्लाह की दलील रब्बिल आलमीन है, रब्बिल आलमीन की दलील अर्रहमान रहीम है, वो उसका प्रूफ है, वो उसका प्रूफ है, सबूत है वो। और रहमान और रहीम दो सिफतें अलग अलग हैं, एक सिफत दो माना में, एक सिफत है एक उसके साथ में वैसी लगा हुआ लफ्ज है, जैसे खाने के साथ वाना, पानी के साथ वानी, चाय के साथ वाए। बाद लोग ऐसा बोल दिए, अब बहुत बड़ी गलती की उन्होंने कुफ्र की बात कह दी है। अल्लाह की कोई सिफत बेकार भी हो गई ना, फिर खाने के साथ वाना तो बेकार ही है, पानी के साथ वानी तो बेकार ही है, और बेकार चीज को अल्लाह की सिफत बनाया जाए तो जो 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 मौसूफ है बेकार चीज का वो खुद ही बेकार होता है फिर। तो देखने में बहुत छोटी बात है मगर सोचने में बहुत बड़ी बात है, कुफ्र तक लग जाएगा। और जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता है कि मैं कहां से बोल रहा हूं, ये बात किसकी बात बोल रहा हूं, नाम लेना जरूरी नहीं होता हर जगह, ऐसा नहीं है। जितनी चीजें अल्लाह पाक की नियमतों का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक इंसान की जिस्म से है और दुनिया से है, उसका ताल्लुक रहमानियत से है। जिंदा रहना, खाना पीना, और रहमानियत की खसूसियत यह है कि उसमें ईमान वाला बेईमान दोनों शरीक कर दिए जाते हैं। रहमानियत की तजल्ली में ईमान और कुफ्र की तकसीम नहीं होती, तू भी खा तू भी खा। सारी दुनिया बनाई गई अपने ईमान वाले बंदों के लिए, लेकिन बेईमान के लिए इजाजत है कि तू भी मौज कर ले। अब वो खाली मौज ही करता है, और ये ईमान वाला बेचारा अपनी फिक्र में पड़ा हुआ होता है कि यार मैं मौज करूंगा तो काम रह जाएगा। जितनी फैसिलिटीज एग्जामिनेशन हॉल में बनाई जाती है, जिसको लिखना नहीं होता उन्हें खाली फैसिलिटीज में मौज करता रहता है, और जिसको असल पर्चा भरना होता है वो पसीने में शराबू रहे, प्यास भी लगी हुई, हालांकि पानी भी है वो नहीं पीता, सब ये है वो सब, वो अपने लगा हुआ है कि यार मेरे 3 घंटे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मैं पहले मेरा पर्चा हल हो जाए। बस ईमान वाले में और बेईमान में ये फर्क है। बनी है चीज ईमान वाले के लिए, कुरान पाक में है कि पूरी दुनिया की नियमतें हमने ईमान वालों के लिए बनाई है, बेईमान को इजाजत है इस्तेमाल करने, मौका दिया गया है। कुल ही लिल्लज़ीना आमनू फिल हयाति दुनिया, दुनियावी जिंदगी में भी ईमान वाले के लिए बनी है, जैसे पूरा वलीमे का खाना दूल्हे के लिए बनता है और बराती पूरे उड़ाते हैं, बल्कि बराती ही ज्यादा उड़ाते हैं, दूल्हा तो अपनी फिक्र में होता है, वो एक नए टेंशन में होता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, बनते ही सबके लिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने रहमानियत की वजह से रुबूबियत का एक निजाम रखा है, और रहम बेगरज होता है। बाप का रहम औलाद के लिए बेगरज, मां का रहम औलाद के लिए बेगरज, रहम की खसूसियत बेगरज होना है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं थे अपनी मखलूक के पैदा करने के, बगैर किसी मोहताज की के पता दी बना दिया। कितनी बड़ी मेहरबानी, कितने शफीक हैं वो, कितनी मोहब्बत करते हैं वो। और नियमतों का कोई सिलसिला है, कोई हद है, एक लामतनाही चाहिए रहमानियत की। और रहीमियत वो है, वो नियमतें जिसका ताल्लुक इंसान की रूह से है और जिसका ताल्लुक आखिरत से है, वो रहीमियत है। खालिसतन यौमल क़ियामा, ईमान वालों के लिए खालिस होंगी नियमतें क़ियामत के दिन, उसमें सबको शरीक नहीं किया जाएगा, और वो हकीकी है। और चूंकि सरकार दो आलम आकाए नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलन जो भेजे गए हैं वो आखिरत की कामयाबी के लिए भेजे गए इंसानों की, इसलिए उनका नाम भी रहीम है। बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, रहमान उनका नाम नहीं है, रहमान अल्लाह के अलावा किसी का नाम नहीं रख सकते, रहीम रख सकते हैं। और वैसे हम सब ईमान वाले इस हकीकत को जानते हैं अच्छी तरीके से कि दुनिया की नेमतों का फैजान भी उन्हीं की बरकत से है, दुनिया की नेमतों के फैजान में भी वो हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वास्ता बनाया है, مگر اسپیشلی ان کی بعثت جو ہوئی ہے انسانوں میں وہ ان کی سیرت کو بنانے کے لیے, انسانیت مکمل کرنے کے لیے, آخرت کے لیے پریپئر کرنے کے لیے, آخرت کی نعمتوں سے استفادے کی صلاحیت ان میں لانے کے لیے, اس لیے اسپیشلی ان کا نام رحیم ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ورنہ تو وہ رسول ہیں, رسول کا مطلب بھیجے ہوئے ہیں, اور اصلی رسول جو ہے نا وہ ایک ہی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خالق نے مخلوق کی طرف جو کچھ بھیجا ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں رہیں گے, یہ قاعدہ ہے, کیونکہ بھیجے ہوئے وہی ہیں اصل. اسے ساری نعمتوں میں ان کا فیضان ہے. تھوڑا دور نکل گیا میں کچھ ایسی باتوں کی طرف کی جس کی وضاحت کے ساتھ ہو تو وہ زیادہ کنفیوژن نہیں پیدا کرتی. خیر میں آ جاتا ہوں ادھر سے واپس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے جسمانی نظام کی نعمتوں کا سسٹم الگ رکھا اور روحانی نعمتوں کا اس کا نظام اور سسٹم الگ رکھا ہے. اور جب جسمانی نعمتوں کو کوئی آدمی صرف فائدہ اٹھا لے اور روحانیت کا کوئی اہتمام اس کے پاس میں نہ ہو تو وہ ناکام ہو جاتا ہے اور یہ نعمتیں اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی. ابھی جتنی نعمتیں میں اور آپ یوز کر رہے ہیں نا, ابھی نعمت بنے نہیں. وہ نعمت جب بنیں گے کہ جب اس نعمت کے یوز کرنے کے بعد میں یہ وبال جان نہ بنے. اگر وہ وبال جان بن گئی تو وہ نعمت کیا ہوگی, وہ تو مصیبت ہوگی نا. پھر کوئی بہترین قسم کی مٹھائی لا کے دے دیا اور آپ نے کسی نے کھا لیا اور مزیدار تھی لیکن اس میں پوائزن تھا, 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے اپنا کام شروع کیا اور ساری آنتیں اس نے کاٹنی شروع کر دی اور پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور پیٹ میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا, اس کے بعد آدمی مر گیا, تو کوئی یہ کہتا ہے کہ مٹھائی اس نے کھائی تھی اس لیے مرا؟ کہتا ہے کہ زہر کھایا تھا اس لیے مرا. اور کوئی اس مٹھائی کو نعمت سمجھے گا؟ مٹھائی کا نعمت ہونا جبھی تک ہے جب وہ مٹھائی نعمت رہے. اگر اس نے دوسرا کام کر دیا تو پھر تو وہ نعمت نہیں ہوگی, مصیبت ہوگی. ایسے جتنی نعمتیں ہیں, فرعون کو جتنی نعمتیں ملی گئی تھی وہ نعمت اس کے لیے نہیں رہی, وہ والے جان بن گئی کیونکہ اسی پر پکڑ ہو جائے گی. قارون کو جتنی نعمتیں ملی تھی وہ نعمت نہیں رہی اس کے لیے, مصیبت وبال جان بن گئی کیونکہ اس پر بھی اس پہ پکڑ ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. اگر اس کا حق تم نے ادا کیا ہے تو پھر تو چھوٹو گے, ورنہ تو اس کی مصیبت میں آ جاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر کسی نے دھوپ میں ہونے کی وجہ سے دیوار کے سائے میں پناہ لی, شیڈ لیا, اس پر بھی سوال ہوگا. پیاس کے وقت میں پانی پی, ویسے پانی پینا پیاس بجھاتا ہے لیکن شدید دھوپ میں پیاس کے وقت میں پینا ایک دوسرا کام بھی کرتا ہے ریلیف کرنے کا, اس پر بھی سوال ہوگا. تو جتنا زیادہ نعمتیں دنیا ملیں گی اتنی ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ بھئی یہ وبال جان نہ بن جائے کل قیامت میں, کیونکہ اگر یہ وبال جان بن گئی تو یہ نعمت نہیں رہے گی. تو دنیا کی نعمتوں کی خصوصیت جو رحمانیت کی تجلی میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں وہ مشروط ہے بھی. جب آدمی کے اندر وہ صفات آ جائیں, اللہ کی وہ پہچان آ جائے, وہ معرفت آ جائے اور رحیمیت کی تجلیات میں آدمی داخل ہو جائے, تو پھر یہ ساری نعمتیں بھی اس کے لیے نہ صرف وبال جان نہیں بنیں گی بلکہ اس کو خیر کا ذریعہ بن جائیں گی, ثواب کا ذریعہ بن جائیں گی, کارآمد ہو جائیں گی یہ دنیا کی نعمتیں بھی آخرت میں بھی, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی گئی. تو جس چیز سے اللہ کی بندگی کی گئی وہ تو نعمت بن گئی. عام کھانا الگ ہے, سحری کھانا الگ ہے, کیا فرق ہے دونوں میں؟ حضور نے فرمایا سحری برکت ہے, تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کھایا کرو, بغیر سحری کے روزہ مت رکھو چونکہ سحری میں برکت ہے. اس کا راز یہ لکھا ہے محدثین نے کہ سحری کھانے والے کے ذہن میں روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھنے کی بیس پر کھا رہا ہے, لہذا یہ کھانا برکت بن گیا اور یہ کھانا طاعت بن گیا, ثواب بن گیا. مستی کرنے کی نیت سے کوئی کھائے گا تو وہ کھانا ثواب تھوڑی بنے گا, روزہ رکھنے کی نیت سے کھانے کی وجہ سے وہ کھانا اطاعت بن گیا. تو یہ ساری نعمتیں کل کے دن نہ صرف یہ کہ وبال نہیں بنیں گی بلکہ خیر کا ذریعہ بن جائیں گی. इसको हमने खाना दिया तो इससे बंदगी की, इसको पहनाना क्यों दिया इससे बंदगी की, इसको हमने एक्स्ट्रा दिया कि खाने से भी बच गया था, पहनने से भी बच गया था, मकान के किराए से भी बच गया था, गाड़ी के खर्चों से भी बच गया था, इस बचे हुए को उसने अल्लाह के लिए लगाया, वो उसके लिए जरिया खैर का हो जाएगा। सारी नेमतों का यही हाल है, हमने इसको बच्चे दिए थे, इसने इसको दीन के लिए लगाया, खैर का जरिया हो जाएगा, सदका जारिया बन जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। एक सिलसिला है, क्योंकि इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा खोला जाए और लंबा काम किया जाए, क्योंकि बयान के बाद में अगर कोई प्रोग्राम होना तो बयान पूरा उस पर असर डालता है। अब आपको खाना भी खाना है, अब थोड़ी देर तक तो सुनोगे, उसके बाद कहोगे कि परवरदिगार इसको तौफीक दे खत्म करने की। इंसानियत की तकमील करना है मुझे और आपको, और वो ईमान से होगी, ईमान बनाना है। तो जब इतने मोहताज अल्लाह पर रहें और इतनी नियमतें अल्लाह पाक की तरफ से हम पर हैं, तो ऐसे मोहताज आदमी को क्या अकड़ना चाहिए? ये है, ईमान के साथ में अमल लाजिम आ जाता है, फिर तो सरेंडिंग है, फिर तो बंदगी है। अच्छा साहब, नमाज पढ़ने को कह रहे हैं नमाज पढ़ूंगा मैं, रोजा रखने को कह रहे हैं रोजा रखूंगा मैं, जकात देने को कह रहे हैं जकात दूंगा मैं, हज करने को फरमा रहे हैं हज करूंगा मैं, हराम चीजों से बचने को फरमा रहे हैं ठीक है साहब बचना है, हलाल पे किनात करना ठीक है साहब हलाल पे किनात करना है। दुनिया में बेशुमार चीजें पड़ी हुई है जो हर चीज अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ईमान वाला तो दुनिया के अंदर कैदी है। दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया ईमान वाले के लिए जेलखाना है। तो जेलखाने में क्या होता है, जेलखाने की तारीफ क्या है? जेलखाने में जेलर के हुक्म की पाबंदी होती है, जो पहनाए पहनना पड़ता है, जो खिलाए खाना पड़ता है, ये नहीं कि जो चीज अट्रैक्ट कर रही है उसको ले लेना पड़ता है। जेल की खसूसियत ही वो है, उसमें पाबंदी होती है, किस्म आजादी नहीं होती। और अल्लाह पाक शफीक होने की वजह से उन्होंने इतनी आजादी फिर भी दी हुई है कि असलन न किसी की जरूरत रुकती और न बकदरे जरूरत ख्वाहिशात रुकती, जरूरत नहीं रुकती और बकदरे जरूरत ख्वाहिशात भी नहीं रुकती। लेकिन ख्वाहिशात एक लामहदूद सिलसिला चाहती हैं, और महदूद दुनिया के अंदर लामहदूद काम पूरा होता नहीं, इसलिए एक सर्कल बना हुआ होता है हर एक के अतराफ और अलग अलग होता है हर एक का, इसको कितना एंजॉय करने देना है कितना नहीं देना है हलाल तरीके से। उसी के साथ जैसे ही ईमान होगा फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी सामने आ जाएगी मेरे दोस्त, तो फिर उससे इंसानियत मुकम्मल होगी, क्योंकि अमल भी बन गया ईमान भी बन गया। इस तकमील इंसानियत पर अल्लाह तबारक व तआला की नवाजिश होगी, बंदा अल्लाह का मुकर्रब बन जाएगा। उसी लिए है, चाहे हम अमेरिका में रहें, सियाटल में रहें, शिकागो में रहें, किसी और जगह रहें, सऊदीया में रहें, कहीं रहें, कुछ भी करें, कोई जरूरी नहीं है कि कुरान और हदीस के माहिर हों, और कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक शोबे के अंदर आदमी एक्सपर्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सब जगह के लिए एक ही कानून है सारे इंसानों के लिए, वो ये है कि तुम अपनी बंदगी मुकम्मल करो, और वो होगी पहले अपने ईमान को बनाने से, और वो होगी अपने आमाल को बनाने से। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले को महबूस फरमाया, और आखिर में सब जानते हैं कि खातिमुन नबीयीन आकाए नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस फरमाया। उन्होंने एक जिंदगी हमारे सामने रखी है। अब ये चीज ऐसी है मेरे दोस्तों कि जो जो जिम्मेदारियां अल्लाह की तरफ से बंदे को दी जाए, बंदे का काम सरेंडर होना है, ठीक है साहब, इनकार का कोई मौका नहीं है, और जब गलती हो जाए तो तौबा करना है, माफी मांगना है, उनको पता है कि बंदे कमजोर हैं, बहुत गलतियां करेंगे, बहुत मिस्टेक करेंगे, इसलिए उन्होंने तौबा का दरवाजा रखा हुआ है कि ठीक है साहब गलती हो गई ना, माफी मांग लो छोड़ दूंगा, माफी मांग लो छोड़ दूंगा, माफी मांग लो छोड़ दूंगा। अरे भाई 50 मरतबा हो गया यार, नहीं 55 मरतबा हो गया तो भी छोड़ दूंगा। एक मुनाफिक के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ना चाह रहे थे, तुम चाह रहे थे कि ना पढ़े, वही आ गई, फरमाया कि ला तकुम, इसके ऊपर नमाज न पढ़े। और ये अल्लाह ने फरमाया कि अगर 70 मरतबा भी इस्तगफार करोगे तो नहीं माफ करूंगा इसको, इन तस्तगफिर लहुम 70 मरतन फले यगफिर अल्लाह लहुम। अगर तू ए नबी, आप भी ए हबीब, आप भी अगर 70 मरतबा माफी मांगोगे इसके लिए तो मैं माफ करने वाला नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का पता चल जाए कि 70 से ज्यादा मरतबा मांगने पर माफ कर देंगे तो मैं जरूर मांगूंगा, क्योंकि शफकत आप पर गालिब थी उस वक्त कि किसी को भी जहन्नम में जाने नहीं देना चाहते थे, हर किसी के लिए कोई शक्ल निकल जाए कि अल्लाह के अजाब से बच जाए, ये थी वो थी। तो जो जिम्मेदारी हमें दी जाए उसको पूरा करना होता है। तो हमारी जिम्मेदारी में मेरे दोस्तों अपनी अब्दियत को मुकम्मल करके सारी दुनिया को अब्दियत पर लाना है। मेहनत करो कि खुद भी बंदे बनो पक्के सच्चे अल्लाह पाक के, और सच्चे उम्मती बनो अपने हबीब पाक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और सारी इंसानियत को लाओ। और इसके वास्ते जो जो करना पड़ता है इस बीच में वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग जुजियात में बता दिया जाएगा तुमको। मतलब मैं तर्जुमानी कर रहा हूं कुरान पाक की बातों में, वो जैसा जैसा तकादा तुम्हारे सामने आते जाए उस तकादे को फुलफिल करना, पूरा करते जाना। और पूरी उम्मत जो है, पूरी इंसानियत जो है, उस सबकी हमदर्दी और खैरखाही होनी पड़ेगी। अद्दीन अन्नसीहा, दीन तो हमदर्दी और भलाई का नाम है। कालू या रसूलुल्लाह लिमन, किसके साथ नसीहत करने का नाम खैरखाही करने का नाम दीन है? फरमाया कि लिल्लाही वली रसूलही वली जमीउल मुमिनीन वली आम्मतिल मुमिनीन। अल्लाह के साथ हमदर्दी करनी होगी, अल्लाह के रसूल के साथ हमदर्दी करनी होगी, और सारे ईमान वालों के साथ हमदर्दी करनी होगी। ईमान वालों का भला हो जाए, ईमान वाले सही रास्ते पर आ जाएं, और जो ईमान वाले नहीं है वो ईमान पर आ जाएं, ये भी जिम्मेदारी का हिस्सा है। लोग समझते हैं कि नहीं खाली मुसलमानों की फिक्र ही अपनी जिम्मेदारी है, नहीं नहीं, इंसान की फिक्र है, और जिन्नात की फिक्र भी हमारी जिम्मेदारी में से है। जिन्नात की फिक्र भी हमारी, क्योंकि वो हमसे छोटे हैं, हमारे ताबे हैं, वो हमारे अच्छे को कबूल करते हैं अच्छे होने की हैसियत से, हमारे बुरे को कबूल करते हैं बुरे होने की हैसियत से। एक पूरा निजाम है अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक का। अभी हम तो न मिल सकते, न देख सकते, न बोल सकते, हम उनको कैसे तबलीग करेंगे हमें पता नहीं चलता। हम समझते हैं कि खाली है शायद जगह, ऐसा नहीं रहता। जितने हम लोग होते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो दूसरे होते हैं। हर जगह का ये निजाम, मस्जिदों का ऐसे ही है। इसीलिए अजान देने और इकामत कहने को कहते हैं कि नमाज के मौके पर आप अजान देकर इकामत करके नमाज पढ़ो। कहते मेरे साथ तो हम दोनों ही हैं, कहेंगे तुम्हें नहीं पता कि तुम दोनों ही हो। यहां और बहुत सी मखलूक होती है, वो भी साथ हो जाएगी तुम्हारे। हम जिन्नात के भी मुकल्लफ हैं, जिम्मेदार हैं कि उनमें भी दीन पहुंचे। जो ईमान वाले हैं गफलत में है, मासियत में है, भूल में है, गुनाहों में मुब्तला हुए, उनको पाक करने का काम भी करो। और जो ईमान वाले नहीं है उनको ईमान की तरफ लाओ, नहीं तो वो बच नहीं पाएंगे। वो ईमान किसी के पास में नहीं है तो पैसा उसको नहीं बचाएगा, उसकी चैरिटी उसको नहीं बचाएगी, उसकी खुश अखलाकी उसको नहीं बचाएगी, उसका ब्यूटीफुल होना नहीं बचाएगा। एक साहब कह लेंगे अरे साहब ये दूसरे आप कहते हैं ईमान वाले नहीं है तो सारे जहन्नम में जाएंगे, तो इतने गोरे गोरे कैसे चले जाएंगे जहन्नम? तो मैंने कहा गिलादत का कीड़ा भी गोरा होता है देखने को, तो काला होता है क्या? गिलादत में जो कीड़ा होता है वो भी सफेद ही होता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। जब ईमान के बगैर इंसानी जिंदगी होती है तो मच्छर मक्खी और वायरस से ज्यादा वो बैक्टीरिया से ज्यादा वो बुरी होती है। और जब आप बैक्टीरिया को दवा डाल के मारते हो तो देखते हो कितने खूबसूरत बैक्टीरिया हैं, कितने गोरे गोरे हैं, ऐ बेचारे मर जा रहे हैं, और कितनी मकदार में मर रहे हैं, हजार लाख करोड़ दस करोड़ मिलियन बिलियन, बस जरूर आप पाइप मारना शुरू कर देते हैं सारे मर जाएं। तबीयत तो चाहती है कि सारे एक भी ना रहे, बैक्टीरिया फ्री हो जाए कंट्री पूरी। बैक्टीरिया से ज्यादा बेहैसियत वो इंसान हो जाता है जिसके बाद ईमान नहीं रहता, तो वो जहन्नम में डालेंगे तो क्या मुश्किल है उनके लिए। वो तो एक निजाम है। इसी वजह से मजहब मजबूरी है मेरे दोस्तों, ये कोई कॉम्प्रोमाइज करने की चीज नहीं होती और सजेशन की चीज नहीं होती। अरे भाई तुम्हारी वो समझ में आ रहा ना तुम वो कर लो, हमारी ये समझ में आ रहा ना हम ये कर रहे हैं, इनकी ये समझ में आ रहा है इन्हों ये कर ले दो। भाई मजहब उनका मसला है, हमारा आपका थोड़ा ही मसला है। कोई मजहब तो मजहब वाले का मसला है, खालिक का मसला है। वो कहे कि अब ठीक है मैंने भेजा था मजहब दूसरा, लेकिन अब इसके अलावा कोई और नहीं चलेगा, नहीं चलेगा खत्म। अब इसके अलावा कोई मजहब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा खत्म। उमय तकी गैर इस्लाम दीन फलन यकबल में, अब इस्लाम के अलावा कुछ और लेके आओगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम के आने के बाद में दूसरे मजहब के हक होने का या चल सकने का गुमान ऐसे ही है जैसे बचपन के कपड़े बड़े होने के बाद में पहनने का गुमान। वो टू इयर्स के वन इयर्स के जो कपड़े हमारे अम्मा बाबा ने दिलाए थे वो रखे हुए हैं, फर्ज कर लो। बोल रहे कि वो मेरे ही कपड़े हैं भाई, कौन कह रहा है कि तेरे कपड़े नहीं होते? वो कपड़े ही हैं, वो कोई और चीज नहीं है। कौन कह रहा है कि वो कपड़ा नहीं है? लेकिन अब आप 25 साल के हो गए, आप कैसे पहनोगे? वो नहीं चलने वाली चीज है। वो इस्लाम के आने के बाद में, इस्लाम से पहले के जितने आसमानी मजहब है, गैर आसमानी के तो बहस ही करने की जरूरत नहीं है मुसलमानों के सामने। इस्लाम से पहले के जितने आसमानी मजहब हैं वो सब बचपन के लिबास हैं। मजहब लिबास होता है, वो लिबास है तकवा दाली का खैर, वो बचपन का लिबास है, वो अब थोड़ी चलने वाला है, अब नहीं चल सकता। इसलिए सारी इंसानियत को मुतवज्जे करना होता है, और इसलिए सारी इंसानियत की फिक्र रखना अपनी जात के साथ साथ ये मुसलमान की जिम्मेदारी में है, और इंसानियत के अंदर स्पेशली मुसलमानों के उमूर का एहतमाम करना मुसलमान की जिम्मेदारी में से। मल्लम यहतम बि उमूर المؤمنین فليس منا, हदीस शरीफ सुनी होगी आपने बार बार, कि जो मुसलमानों के मामलात का एहतमाम न करे उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हुजूर फरमा रहे हैं। और यहां पर लफ्ज जो है ना वो एहतमाम का यूज किया गया। एहतमाम जो है बाज़ाब्ता फिजिकल वर्क को कहते हैं। आप किसी चीज के मोहतमिम हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप सेक्रेटरी हैं, अब बन के बैठ गए, कुछ करेंगे नहीं तो कहां से चलेगा एहतमाम? एहतमाम चाहिए, खाली आप चाहें दुआ करें विश करें वैसा नहीं है, एहतमाम चाहिए। जिसको एहतमाम ना हो मुसलमानों के मामलात का, उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। तो इसलिए पूरी दुनिया में जहां कहीं अल्लाह की बंदगी के लिए कोई काम किया जा रहा हो, तो अगर हमारी बिसात में हो और अगर हमारे लिए कानून की कोई रुकावट ना हो, उसमें हिस्सा लेने की जिम्मेदारी सर पे आ जाती है। हमारी बिसात में नहीं है, हम माजूर हैं। हमारे लिए कानूनी रुकावट है, हम माजूर हैं। बाद लोग इस बात का सवाल करते हैं कि साहब फला साहब काम कर रहे हैं, फला साहब काम कर रहे हैं, हमारे पास तो नहीं कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? किस कदर नादानी वाला जुमला है ये, कैसा मासूम बच्चा है बोलने वाला। अब साउथ अफ्रीका के उलमा हमारे पास आके पढ़ा रहे हैं, अगर साउथ अफ्रीका में आलिम तैयार नहीं होते यहां आपको कौन मिलता? फिर देवबंद के उलमा पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हाफिज बन के आगे पढ़ा रहे हैं, उस्ताद बन गए, अब वो बोलते हमारे पास क्या है बोल के उसका ताउन ना करते, तो आज आपको मिलता वो इमाम? यहां वहां मुसलमान परेशान हाल है, उनकी मदद करो भाई, इधर उधर दूसरे मुल्कों में कोई जो ना वाला सैलाब की वजह से, कोई जलजले की वजह से, कोई लड़ाई झड़ाई की वजह से, कोई सरपुटबल की वजह से, कोई जुल्म की वजह से, किसी भी वजह से हमें मदद कर दो। आप बोलते नहीं हमारे पास तो सियाटल में तो नहीं हुई गड़बड़ी, ये पटाखे सियाटल में तो नहीं फूटे, हम कहीं को देना? बोले कभी आप? नहीं बोल सकता, ईमान वाला बोल ही नहीं सकता, ईमान वाला बोल ही नहीं सकता। अब हमारे पास मसले आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से भी आते हैं, मुख्तलिफ स्टेट से भी आते हैं, काउंसलिंग के भी आते रहते हैं, निकाह तलाक के भी आते रहते हैं, कजाया और सवालात भी आते रहते हैं। अब हम बोले भाई शिकागो वालों से तो, शिकागो वालों ने तो नहीं पूछा, हमने तो इदारा शिकागो में कायम किया, हम क्यों जवाब दें? बोल सकते हैं सर कि नहीं हम ऑनलाइन पर सिर्फ वही जवाब फीड करें लोड करेंगे भाई जो शिकागो वाले पूछेंगे, चूंकि हम तो शिकागो में रहते हैं। नादानी की बात करते बाद मतलब बच्चे उनके मुंह से निकल जाता है कि भाई यहां याद तो नहीं है ना कुछ, कहीं भी हो रहा हो आप ही का काम है, कहीं भी हो आप ही का काम है। क्यों? इसका दूर से नजदीकी से कोई ताल्लुक नहीं है। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दूर और नजदीकी, मकानों की मसाफतें, मुल्कों की मसाफतें, इलाकों की मसाफतें, जुबानों की मसाफतें, कबीलों की मसाफतें, कोई मसाफत नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, आप सारे आलम के लिए मबूस हैं, आप कयामत तक के लिए मबूस हैं, और सारी इंसानियत के लिए मबूस हैं, और इंसानियत के हर इंसानों में हर शोबे के लिए मबूस हैं, सबके लिए हैं आप, और हम भी सबके लिए होते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी में। इसलिए काम में तो मेरे दोस्तों अपनी गुंजाइश के बकदर हिस्सा लेना पड़ता है। एक साहब के पास हम गए, कहने के बस वो अभी मस्जिद बन रही है वहां पर, उसमें मैं इन्वॉल्व हूं, इस वजह से मैं आपका कोई ताउन नहीं कर सकता, हम ताउन के सिलसिले में गए थे। मैंने कहा यार दोस्त एक बात सुन, कहेंगे क्या? मैंने कहा तुमने दावत की कभी? कहेंगे हाँ की, बहुत मर्तबा की, 20 आदमियों की, 25 आदमियों की कोई दावत याद आ रही? कहेंगे हाँ याद आ रही। मैंने कहा जब आदमी 20 आदमी की दावत की और दो आदमी और आ गए, तो आपने कभी ये कहा है कि यार मैंने तो 20 की थी, तुम दोनों आ गए हो लिहाजा तुम जाओ घर को? कहेंगे मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैंने कहा फिर करते क्या हो? कहेंगे अल्लाह बरकत देता है फिर उसी में बिठा देते हैं, शरीक कर लेते हैं। मैंने कहा इतनी बात हमारे साथ समझ में नहीं आ रही तुम्हारे को? भाई एडजस्ट करो, एक आदमी के पास एक रुपया है और सामने वाला मोहताज है एक रुपये का, आपने दे दिया। उसी आदमी के पास एक डॉलर है, दो आदमी मोहताज है तो आप अठन्नी अठन्नी कर देंगे उसको, दो क्वार्टर उसको दे देंगे। वही एक डॉलर है लेकिन चार आदमी आपके पास आ गए तो आप क्या करेंगे, क्वार्टर क्वार्टर कर देंगे उसको, एडजस्ट तो कर लोगे ना अगर एक ही है तो। ये थोड़ी होगा कि नहीं मैं उसको दे रहा तुम तुमने को नहीं दूंगा, ये तो कोई ये तो हमदर्दी नहीं हुई है, ये कोई तकाजा नहीं होता। एक लतीफा याद आया, पता नहीं खवातीन है सुनाना क्या नहीं, अरे चलो सुनो, औरतें भी तो बहुत इंजॉय करती हैं। वह एक साहब ऊपर सीट पे बैठे हुए थे गाड़ी में, दो मस्तूरात जो दो लड़कियां नीचे बैठी हुई थी सीट पे, वो दोनों आपस में बात करने लगी। कहने लगी तू किससे शादी करेगी, तो कहने लगी मैं शादी करूंगी कम अज कम उसके पास $1,00,000 होना चाहिए। तो कहने लगी हर एक के पास कहां होते हैं $1,00,000 यार, तो बोले नहीं उसके पास फिर ऐसी सूरत में अगर नहीं मिला कोई ऐसा तो 50,000 उसके पास होना ही। तो कहने लगी कि ऐसा भी है कि आदमी अच्छा खासा है तुझे रोटी दे देगा, अब यह कि 50,000 भी उसके पास नहीं हुए तो फिर क्या होगा, तो बोले 25,000 पे मैं राजी हो जाऊंगी। कहने अगर उसके पास 25,000 भी नहीं हुए तो कहने कि 10,000 पे मैं राजी हो जाऊंगी। तो वो जो ऊपर बैठा हुआ था ना वो झांकी कहने लगा बीबी जब ये रेट गिरते गिरते 100 पे आ जाए तो मुझे बता देना। मगर फिक्र तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, फिक्र सबको करनी पड़ेगी हम सबको। और जिस मुल्क में मैं और आप हैं इस मुल्क के एतबार से एक्स्ट्रा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहां पर मुल्क के अंदर तमाम स्टेट्स के अंदर पाए जाने वाले हालात मुश्तरक हैं और सारे जगहों का मुसलमान मुश्तरक है और सारे जगहों के मुसलमानों के हालात मुश्तरक हैं और उनके मसाइल पूरी दुनिया में यह हिसाब है लेकिन स्पेशली यहां पर है। उनके 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 आने वाली जनरेशन के मसाइल मुश्तरक हैं, उनके यूथ के मसाइल मुश्तरक हैं, उनके शादी ब्याह के मसाइल मुश्तरक हैं। हमको तो पूरे मुल्क के मुसलमानों के बारे में फिक्र रखनी होगी और तकसीम जायज नहीं होगी, और इसी वजह से इसमें इलाकाइयत नहीं चलेगी, ये हैदराबादी है ये पाकिस्तानी है ये गुजराती है ये सिंधी है ये बांग्लादेशी है ये श्रीलंकन है ये मद्रासियन है ये यूरोप का है ये इजिप्ट का है, ये नहीं चलेगी। काम करो दीन का काम, दीन का काम मिलके करना है और दीन की जिम्मेदारियों को मिलके संभालना है और दीन के तकाजों को मिलके पूरा करना है, और नाम मिले तो भी करना है, नाम न मिले तो भी करना है। कल कयामत में हम अल्लाह से ये नहीं कह सकते या हुजूर के सामने ये नहीं कह सकते कि चूंकि मुझे नामनेट नहीं किया गया था किसी ओहदे के साथ में इस वजह से मैं हिस्सा नहीं ले सका, ये तो और गलत बात हो जाएगी। अच्छा आप गैरुल्लाह की पूजा करते हैं, ये बात आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोस्तों महज इखलास के साथ दीन की मेहनत में हिस्सा लेने को कहा है और काम करने वाला खुद ही आगे निकल जाता है। फर्ज करो शुरू में बाद मरतबा किसी को किसी के नाम के साथ लगाया गया, किसी को नाम के साथ नहीं लगाया गया, इंतजामी एतबार से सबको तो नहीं आ सकता ना, सबको तो नाम नहीं दिया जा सकता। अब वो सारे काम करने वाले थोड़ी होते हैं जिनको नामनेट किया गया, और सारे दूसरे ऐसे थोड़ी होते हैं जिनको नामनेट नहीं किया गया वो नहीं कर सके, जिसके पास सलाहियत है वो ले उठता है। जो बड़ के हाथ में जो बड़ के हाथ क्या हो जो बड़ के हाथ उठा ले मीना उसी का है, जो बड़ के हाथ में क्या है वो किसी को याद है, जाम उसी को मिल जाएगा जो आगे बढ़ के हाथ लेगा तो आगे निकल जाते हैं साथ ही। फिर जिम्मेदारियों को देख के तकसीम भी कर दिया जाता है कि भाई फला साहब इसके जिम्मेदार है ये कर लेंगे, फला साहब इसके जिम्मेदार है ये कर लेंगे। कुछ भी हो मेरे दोस्तों हमें काम करना है दीन का, और दीन के कामों में वो चीज जिसका ताल्लुक दीन फैलने से है, एक है दीन का काम नमाज पढ़ना तस्बीह पढ़ना जिक्र करना इस्तगफार करना तिलावत करना, एक दीन के काम ये भी हों सुन्नतों की इत्तेबा करना सुन्नत के मुताबिक चलना, इसको इत्तेबा कहते हैं, यह इत्तेबाए नबी है, यह भी हक है हुजूर का, हुजूर का हम पर हक है, करना पड़ेगा ऐसा। हम नहीं बोल सकते कि साहब नहीं मैं ये नहीं करूंगा मेरी मर्जी। दूसरी बात इसके साथ में यह होती है कि जिसका ताल्लुक दूसरी इंसानियत से फायदे से हो, दूसरी इंसानों के दूसरे अफराद के फायदे के साथ मुताल्लिक हो उसको नुसरत कहते हैं, अल्लाह की नुसरत कहते हैं उसको, अल्लाह के रसूल की नुसरत कहते हैं उसको, जिसके अंदर इदारे आ गए, जिसके अंदर बच्चों को हाफिज बनाना आ गया, आलिम बनाना आ गया, تبلیغ آ گئی, دعوت آ گئی, وہ نصرت میں آتا ہے. اور نصرت الگ سے حق ہے. اسی وجہ سے فرمایا گیا کونوا انصار اللہ, تم اللہ کی نصرت کرنے والے بنو, اللہ کے رسول کی نصرت کرنے والے بنو. من انصاری الی اللہ, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ, قال الحواریون نحن انصار اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو کونوا انصار اللہ, تم بھی اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ. تو اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اسٹیبلش ہونے کے لیے اور اسلام کے اسٹیبلش ہونے کے لیے, جمنے کے لیے, کیونکہ پیر جمنا الگ چیز ہوتی ہے, حالات بننا الگ چیز ہوتی ہے, ماحول کا تیار ہونا الگ چیز ہوتی ہے, محنت چاہیے ہوتی ہے بہت اس کے پیچھے. جو قربانیاں درکار ہوں گی وہ ہمیں کرنی ہے اس وقت, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں بھگتیں گی. یہ دنیا کا نظام کچھ ایسا ہے کہ اجتماعی چیزیں اجتماعی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں. اب ہمارے نوابوں نے غفلت کی, عیاشی میں پڑ گئے, بدماشی میں پڑ گئے, تو اب ہم غلامی کے دور جی رہے ہیں, جی رہے ہیں. ہم نے کس کے ساتھ کیا بدماشی کی؟ بدماشی انہوں نے کی, حکومت کرنے کے بجائے کچھ اور کرتے رہے, بھگتنا پڑ گیا آنے والی نسلوں کو. ایسے ہی اگر ہم نے اس وقت غفلت کی, جو ہماری ذمہ داری میں سے ہے, آنے والی نسلیں جو اس ملک کی ہوں گی وہ بھگتیں گی. اور ہم سے مواخذہ ہوگا اس بات کا, پوچھا جائے گا ہم سے. اس لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس بات کو سیریس لینا ہے, سنجیدگی سے لینا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے دین کی محنت کی جو ذمہ داریاں مجھ پر ہیں وہ میں ادا کروں گا, اور اس کے لیے جان سے, مال سے, صلاحیت سے, جذبات سے, سب چیزوں سے حصہ لوں گا. ضرورت پڑتی ہے ان سب چیزوں کی. اللہ نے مال دیا ہے, مال دو. اور کس کو اللہ نے کتنا دیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. آپ کسی ادارے کو دے رہے ہیں, کسی مسجد کو دے رہے ہیں, یہاں دے رہے ہیں, وہاں دے رہے ہیں, تو آپ سیدھا اللہ کو دیتے ہیں, سیدھا اللہ کو دیتے ہیں. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, سنا ہوگا آپ نے, وہ یہ کہ صدقہ جو ہے نا, وہ صدقہ کب بنتا ہے؟ ایک سوچو تھوڑی, ایک بہت عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ سے, بڑی کام کی علمی بات بھی ہے. جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے تو صدقہ نہیں بنا نا, غریب کے ہاتھ میں جاتے صدقہ بن گیا, تو اس کے ہاتھ میں جاتے صدقہ کیسے بن گیا؟ وہ علماء نے لکھا ہے کہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جا کے صدقہ بن کے غریب کے ہاتھ میں پہنچتا ہے, تبھی وہ صدقہ ہے, ورنہ صدقہ بول ہی نہیں سکتے تھے اس کو. جب کوئی ایمان والا اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے, چاہے مسجد پہ کرے, ادھر مدرسے پہ کرے, بچوں پہ کرے, غریبوں پہ کرے, یتیموں پہ کرے, قرض خواہوں پہ کرے, بیواؤں پہ کرے, کسی پہ کرے, جب کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پہنچنے پر اس کو صدقہ ملا یا ملنے کے بعد صدقہ بنا, یہ دیکھو اس نے صدقے کو لیا یا اس کو پیسہ بغیر صدقے کے ملا تھا, اس کے ہاتھ میں جانے سے وہ صدقہ ہوا. علماء کہتے ہیں کہ صدقہ ہونے کے بعد اس نے لیا, صدقہ ہونے کے بعد. تو صدقہ ہونے کے بعد کا مرحلہ بیچ میں کہاں آیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ ہونے کے بعد کا مرحلہ بیچ میں ایسا آیا کہ جب بندہ کچھ دیتا ہے تو وہ اللہ لیتا ہے پہلے, پھر بندے کو دیتا ہے. اور ویسی بات نہیں بولوں, کتابوں کی لکھی ہوئی بات سنا رہا ہوں میں آپ. تو معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس لیے میں اس کو میں مخلص ہونا ضروری ہے اور سنسیئر ہونا ضروری ہے. تقاضے کے اعتبار سے حصہ لینا پڑے گا, تقاضے کے اعتبار سے, ضرورت کے اعتبار سے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. زیادہ ضرورت ہے تو زیادہ, کم ضرورت ہے تو کم. استطاعت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے, اور اگر ہماری استطاعت کم ہے تو اپنی استطاعت کے اعتبار سے حصہ لینا ہوگا. اللہ کے پاس کوانٹیٹی کی اتنی اہمیت نہیں ہے, کوالٹی کی ہے, کیفیت کی ہے. اس لیے غریب آدمی صدقات میں امیر سے بڑھ جاتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے. کیونکہ غریب آدمی کے پاس $10 ہوتے ہیں, وہ 10 کے 10 دے دیتا ہے. 100 امیر کے پاس 1000 ہوتے ہیں, وہ اس میں سے 100 دیتا ہے. دیکھنے کے اعتبار سے اس نے 10 دیے, اس نے 100 دیے. حقیقت کے اعتبار سے اس نے 100% دیے, اس نے 10% دیے. اس لیے مالی قربانیوں میں غریب ہمیشہ امیر سے آگے رہتا ہے, اور جانی قربانی میں ہمیشہ امیر غریب سے آگے رہتا ہے. اس کو 5 میل چلا دو آرام سے چل سکتا ہے, لیکن جس نے کبھی کارپیٹ سے قدم نیچے رکھا ہی نہیں, سیدھا بیٹھا تو گاڑی میں بیٹھا, اب آپ نے اس کو گشت کروا دیا 2 میل کی, उसका तो बेड़ा गरक हो गया, गरीब का छाले आ गया उसके पांव में, इसके तो 5 मील चल के भी छाले नहीं आए। तो गया है ये 1 मील ही और वो 5 मील, लेकिन इसकी कुर्बानी ज्यादा है उससे। इसलिए अमीर उसकी अमारत, उसकी जानी कुर्बानी गरीब से बढ़ जाती है और गरीब की माली कुर्बानी अमीर से बढ़ जाती है। ये हैसियत अल्लाह ताला के यहां एक दूसरे एतबार से है। और मुतालबा इस बात का होता है कि तुमको अपनी माली एतबारी सलाहियत में से हिस्सा लेना है, जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से सच्ची प्लानिंग यही है कि जो बच रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा ज़खीरे आखिरत कर लो, इधर दिया कि उधर दाखिले खजाना हुआ। और फिर उसमें यह भी बात है कि बीवी बच्चों का भी खर्चा जहन में रखो, रिश्तेदारों को भी जहन में रखो। हमारे माल का तो मसरफ ही ये होता है, अपनी जरूरत होती है या हमारे मुतालिकीन की जरूरतें होती हैं या अल्लाह के दीन की मेहनत होती है या हमारी इबादतें होती हैं। मुसलमान का माल सिर्फ 4 जगहों पर जाता है, या अल्लाह के दीन की मेहनत में यानी नुसरत में लगता है, या इबादत में लगता है माल हमारा। इबादत में मस्जिद बनाना आ गया, हम जो पैसा मस्जिद बनाने के लिए लगाते हैं तो इबादत में लग रहा है, वो नुसरत में नहीं लग रहा। हम जो हज में पैसा लगाते हैं वो इबादत में लगता है, नुसरत में नहीं लगता। तो हमारा माल या नुसरत इलाही में लगता है, नुसरत दीन में, या इबादत में लगता है, या अपने मुतालिकीन और दूसरी जरूरतों में लगता है, हमारे दोस्तों और अहबाब की, खानदान वालों की, बीवी बच्चों की, या अपनी जात पर लगता है, खाने में, पीने में, पहनने में, सवारी में। ये 4 ही मसरफ होते हैं मुसलमान के माल के, और 5वां कोई मसरफ नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, जो इदारा चल रहा है माशाल्लाह आपका शिकागो में, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, रहमत आलम फाउंडेशन, अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश करके यहां पर भी उसकी एक ब्रांच भी माशाल्लाह कायम कर दी गई है। और आप इसकी एक्टिविटीज देख ही रहे हैं, अभी 4-5 जगहों पर जुमा भी शुरू हो गया और तालीम भी शुरू हो गई, और दारुलूम को भी माशाल्लाह वहीं गुजारिश करके दोनों मौलानाओं से शिफ्ट कर लिया गया, वहीं तालीम हो रही है, शाम की तालीम का भी नज्म हो रहा है। लेकिन और बहुत से काम हैं जो रिफाही करने के हैं, सोशल करने के हैं, मुसलमानों के तकाजे हैं, ये जरूरतें हैं, उनको पूरा करना है हमको। अभी हमारे यहां शिकागो में एक साहब ने फ्यूनरल होम बनाया, उसमें बयान करने के लिए मुझे बुलाया। कुछ लोगों ने एतराज किया कि तुमने ये दीन का काम छोड़ के ये करना शुरू कर दिया। पहले जमात में जाता था बेचारा, बाद में उसने ये इसमें लग गया। उसको किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि ये क्या तुमने बेहोदगी की, अपना टाइम वेस्ट किया। मैंने कहा बंदे खुदा के, अगर यहां पर कोई गुस्ल देने वाला मुसलमानों का नहीं रहा तो सारे मुसलमान गुनाहगार होते हैं। तकाजा है उम्मत मुस्लिमा का, ये इसको सवाब मिलेगा आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आपको सबको पता है कोई मुसलमान को गुस्ल न दे, मुसलमान को कफन न दे, मुसलमान को दफन न करे और उसके बाद अखराजात का इंतजाम न हो तो पूरी उम्मत गुनहगार होती है, मुसलमानों की जिम्मेदारी। और मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, इनके जिम्मे कब्रस्तान खरीदना भी है। भाई कब्रस्तान ही नहीं है, गैरों के साथ ले जाके दफन कर दे रहे हैं, गैरों के साथ दफन हो जा रहे हैं। गैरों के साथ में दफन होना इस शरान सही नहीं है, मुसलमानों को इसका फिक्र करना पड़ेगा। जब कोई आदमी कुफ्र की बात करता है और इस्लाम से निकलने की कोई बात करता है तो किताबों में लिखा है कि उस आदमी को मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन होने नहीं दिया जाएगा। ये क्यों लिखा है भाई? अल्लाह ताला ने तकसीम रखी है, इसलिए कि वहां जाकर अलग है सब। मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, जैसे आखिरत का मरहला शुरू हो जाए फिर मिक्सिंग नहीं है। अब उसमें नेक साले में कौन कितना नेक है कौन कितना नहीं है उस पर हुक्म नहीं लगा सकते, इसलिए सिर्फ ईमान को और बेईमानी को देखा जाता है। इसके तो जिम्मे ये भी है। इसलिए जो तकाजे उम्मत मुस्लिमा के मेरे दोस्तों हमारे सामने आएंगे, उन तकाजों को पूरा करना, निभाना, और उसके बारे में जो हमारे सामने काम करने वाले आए उन काम करने वालों की हौसला अफजाई करना, उन सब वो सब जरूरी, उसमें अपने से जितना हो सकता है हिस्सा लेना। इसलिए यहां पर इस इदारे को इस्टेब्लिश करने के लिए, इसके कामों को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे यहां के मकामी तकाजों को पूरा करने के लिए भी, और जहां जहां भी इसका काम हो रहे हैं, ये हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हर हर स्टेट में, हर हर शहर में इस किस्म के इदारे वजूद में आ जाएं, ताकि मुसलमानों के जो तकाजे हैं वो तो पूरे हों, उनकी तालीम और तरबियत का निजाम हो, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत का निजाम हो, उनको सही नमाजों के पढ़ाने वाला मुयसर हो, उनको सही रोजे रखवाने वाला मुयसर हो, उनको सही तरावी सुनाने वाला मुयसर हो, और उनको सही खिलाने वाला मुयसर हो, उनके जबिया का निजाम सही हो जाए, उनके शादी ब्याह का निजाम सही हो जाए, उनके फाइनेंस का और मालियात का निजाम सही हो जाए। ये सारे ही तकाजे हैं, ये सभी करने पड़ेंगे हमको। तबलीग भी करनी पड़ेगी, अल्लाह के रास्ते में नहीं जाएंगे तो तालिब ही नहीं बनेंगे, दीन की फिक्र ही उनके अंदर नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। मदरसे में नहीं जाएंगे तो जाहिल रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। खानकाहों से नहीं जुड़ेंगे तो गाफिल रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सभी की जरूरत पड़ती है। जितने काम सरकार ने फरमाए हैं वो सारे काम सरकार के हैं और सब में हिस्सा लेना पड़ता है उम्मत को। इनकार नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बात को मैं खत्म करता हूं चंद गुजारिशात के साथ में, और ये गुजारिश करता हूं कि भाई इसके सिलसिले में मालिये की जो फिक्र की जाती रही है और की जाती है वो इस हर साल करने का यहां पर इन लोगों ने इरादा किया है, हमारे साथियों ने माशाल्लाह से, और कुछ हम और साथियों को उसमें ऐड भी कर रहे हैं, इजाफा भी कर रहे हैं, क्योंकि साथी कुछ माशाल्लाह अच्छी सलाहियतों वाले हमें और मुयसर हो रहे हैं और वो दिलचस्पी भी लेना चाह रहे हैं, तो उसमें और मिलाएंगे और सामने आएंगे साथी तो और मिलाएंगे। भाई काम ही तो करना है, कोई गुरु तो नहीं बांटना है ना कुलिया में, काम ही करना है अपने को। तो उसके एतबार से हमारे तकादा मेरे दोस्तों ये है कि जो इस किस्म की बात हमारे सामने आए, जो तकादा आए, उसमें हमें हिस्सा लेना है। मैं मस्तूरात से हमारी बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि उनको भी हिस्सा लेना है, अपने माल से भी हिस्सा लेना है, और जहन बनाने से भी, और दुआओं के करने के साथ में भी हिस्सा लेना है। दीन की फिक्र मर्दों में भी हो जाए, औरतों में भी हो जाए, कि हम अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाले हो जाए, और हमारे अंदर अल्लाह की बंदगी और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ये आ जाए, हम कामिल हो जाएं और इंसान दूसरा मुकम्मल हो जाए, वो भी कामिल हो जाए, इंसानियत मुकम्मल होकर इस दुनिया से जाए ताकि वो जन्नत में रखे जाने के काबिल हो जाए। ये फिक्र होती है मेरे दोस्तों। इसलिए गुजारिश ये है कि ये जो मजमा इस वक्त हमारे सामने है, इसमें से 25-30 साथी ऐसे तैयार हो जाए जो हमारे यहां के ये जो इदारा हो रहा है, काम कर रहा है, रहमत आलम की जो ब्रांच यहां काम कर रही है, अल्लाह की तौफीक से एक ब्रांच मिशिगन में भी कायम हो गई है, अल्लाह की तौफीक से एक ब्रांच न्यूयॉर्क में पहले से चल रही है, और सैन डिएगो वाले भी तकाजा करके वहां पर भी शुरू किए हैं, बाल्टीमोर वाले तकाजा करके वहां पर भी शुरू किए हैं, तो जगह जगह इसके तकाजे आते जा रहे हैं। तो अब हम ये नहीं बोल रहे कि भाई हम वहां नहीं रहते, हम क्यों करें, हमें तो जाना ही है, हम तो मेहनत करेंगे भाई, काम होना है किसी तरीके से, तो हिस्सा लेना है उसमें, और मरकज को भी फायदा पहुंचाना है जो हमारे जहां से काम को शुरू करने की कोशिश की गई है। तो इन सब तकाजों को पूरा करने के लिए हमें थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जैसे गुज़िश्ता साल माशाल्लाह आप हजरात ने फिक्र की थी, वहां पे एक अच्छी खासी बड़ी फंडरेजिंग की थी यहां पर शिकागो की रहमत आलम की बिल्डिंग को पेड अप करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ताला यहां से $2,00,000 वसूल हुए थे। $1,00,000 आप हजरत ने दिया था, मैच होके 2 हो गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फेस जो है ना, जो हमको बिल्डिंग को पेड अप करने का था वो पूरा हो गया। 22,00,000 की बिल्डिंग अब जाके 4,50,000 पे आ गई, मतलब उसके 4,50,000 बाकी रह गए हैं। खैर ये तो एक छोटा सा तकादा होगा, लेकिन मुझे और आपको तो बहुत काम करने के हैं। अब हम यहां ये सेंटर में बैठे हुए हैं, जिसके जाहिर के जिसके एतबार से हम मुनासिब नहीं समझते कि इस तरह की जगहों पे जमा हो और हम अपने दीन की बातों का मुजाकरा करें, हमें अपनी जगह चाहिए। लेकिन हम काम करेंगे तो सारे तकादे सामने आते जाएंगे और शक्लें अल्लाह पाक बनाएगा। जैसे जैसे तकादे पूरे होते रहेंगे वैसे इंशाअल्लाह तआला हम काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो सारे करेंगे सब साथ ही इंशाअल्लाह। हाँ, कोई नौजवानों में कोई ऐसे हैं जो हाथ उठा के कहे कि साहब हमें अपने काम में शरीक करो, हम काम में हिस्सा लेने को तैयार हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी तैयारी हिस्सा कर सकते हैं, उनकी अपनी सलाहियतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लिखना है, जरूरत नहीं है।
कल अगर मगरिब में यहाँ पे आ इरादा करें तो
और भी नौजवान हैं, इरादा करो सारे। और जो हजरत हमारे नजीर भाई ये कह रहे हैं कि जिन जिन हजरत ने इस तरह इरादा फरमाया है वो हजरत आ जाए मगरिब में, थोड़ी देर बैठेंगे और तकादों के बारे में मुजाकरा कर लेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से इसको करना है। बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह सोच विचार के बहुत अच्छे अंदाज में करने की सलाहियत होती है हमारे पढ़े लिखे लोगों में, अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। और हमारी ये दुनियावी सलाहियत और दुनियावी तालीम की सलाहियत दीन की खिदमत में लग जाएगी। अब अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा काम हो जाएगा, वही हो जाएगा कि सहरी खाई रोजे की नीयत से। ये सलाहियतें हमने दीन के लिए लगा दी, तो ये सारी सलाहियतें और ये सारे सर्टिफिकेट और ये सारे जितने भी हमने हासिल किए हुए हैं ये सब भी कल कयामत में कंसीडर हो जाएंगे। इसके बगैर अगर हम गए, आपने बड़ा एक्सपीरियंस किया है, बड़े अच्छे डॉक्टर आप रहे हैं, बड़े अच्छे इंजीनियर आप रहे हैं, और जिन्हें वाला डिप्लोमा आपने किया है, आपको बहुत ज्यादा डिग्रियां मिली हैं, कब्र में चले गए, अब 4-5 आप अपने साथ में रख लिए, वहां पेश करोगे फरिश्तों को कि यार ये मैंने किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर ये चीज दीन के लिए यूज हो गई, आप नहीं पेश करेंगे, वो पेश करेंगे फरिश्ते, किताब इसने अपनी सलाहियत को दीन के लिए इस्तेमाल किया है। तो जैसे रोजे के लिए सहरी खाने वाले की सहरी को कल कयामत में फरिश्ते पेश करेंगे, ऐसे हमारी इन दुनियावी सलाहियतों को कल फरिश्ते दीन की मुसादत के तौर पर पेश करेंगे कि जो जो मींस और जराए दीन की खिदमत के लिए यूज हुए इनकी तरफ से, उसमें परवरदिगार ये भी है, ये भी है, ये भी है, किस कदर खुशनसीबी की बात है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम हुजूर की उम्मत है, हम आदमी हैं, سب کی فکر کرنا ہے، خود کو بھی اللہ کے راستے میں نکالنا ہے اور اپنی تربیت کرنی ہے، اپنا ایمان بنانا ہے، اپنے اعمال بنانے ہیں، بزرگوں سے تعلق پیدا کرنا ہے، علماء سے تعلق پیدا کر کے ان سے مسئلے مسائل پوچھ کے عمل کرنا ہے، اور ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے اور اسپیشلی مسلمانوں کی بھلائی کے واسطے جو تقاضے جو ذمہ داریاں ہمارے سامنے آئیں اس میں بھی بھرپور حصہ لینا ہے، کنجوسی نہیں کرنی ہے، حوصلہ چھوٹا نہیں کرنا ہے، شک نہیں کرنا ہے اللہ پر، اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اعتماد کر کے ہم کو آگے بڑھنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں، درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.